जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe.
Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Bhagavadeva Jaya Sudhartha
परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इष्ट वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। रिताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के विविध नामों के विषय पर। आप तो जानते हैं कि भगवान के अनेक नाम हैं और भगवान के अनेक नाम क्यों हैं? क्योंकि भगवान अनेक है? नहीं, भगवान तो एक है, परंतु वो परम सत्य है, असीमित है, इसलिए उनके नाम भी असीमित हैं, असंख्य हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं नाम नाम अकार्य बहुधा, कि हे प्रभु आपके अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण गोविंद आदि, निज सर्वशक्ति ही। और इन समस्त नामों में आपने अपनी सारी शक्तियां समर्पित कर दी हैं। तो भगवान अनंत होने के कारण, असीमित होने के कारण, परम सत्य होने के कारण उनके नाम भी अनेक हैं, असंख्य हैं, असीमित हैं, स्वाभाविक है ये। वैसे मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमने एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का शीर्षक था भगवान के 10 करोड़ नाम। और कहानी ऐसी थी कि हिमालय के तिब्बत के प्रांत में कई बौद्ध साधु रहते थे, वैरागी थे, और उन्होंने एक प्रकल्प शुरू किया। उनके ग्रंथों में, वास्तव में उनके ग्रंथों में है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस कहानी में ऐसे लिखा था, उनके कोई ग्रंथों में ऐसे बताया गया था कि भगवान के 10 करोड़ नाम हैं, और जैसे ही ये 10 करोड़ नामों की गिनती हो जाएगी तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो भगवान के समस्त नामों का वर्णन तो करना है, तो उन्होंने शुरू किया था वो काम करना, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया कि विदेश में, अमेरिका में गए, और वहाँ एक कंप्यूटर वाले कंपनी को उन्होंने काम में लगाया कि शब्दों के अलग अलग मिश्रण से, अक्षरों के मिश्रण से अलग अलग शब्द बनाते जाइए बनाते जाइए, तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम एक आ ही जाएगा उसमें। आप समझ रहे हैं, अक्षरों से अक्षरों को मिलाकर तो शब्द बनते हैं, लेकिन अक्षरों के अलग अलग मिश्रण से अलग अलग शब्द बन सकते हैं। तो उनकी धारणा ये थी कि ऐसे कंप्यूटर से शब्द निकलते जाएं तो अनेक वर्षों के बाद अनेक नाम भगवान के आ जाएंगे, और एक दिन ऐसे होगा कि जितने भी शब्द संभव हैं अक्षरों के मिश्रण से वो सारे आ जाएंगे, और जब भगवान के 10 करोड़ नाम तक पहुंच जाएंगे तो फिर सृष्टि का अंत होगा। तो ये कंप्यूटर कंपनी काम करती गई करती गई, लाखों करोड़ों 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 ऐसे शब्दों के मिश्रण से शब्द बनते गए, और फिर एक दिन अनेक वर्षों के बाद 10 करोड़ नाम हो गए भगवान के, सृष्टि का अंत हो गया। अंत हुआ नहीं, हम बैठे हैं अभी तक, लेकिन ये कहानी हमने पढ़ी थी। साइंस फिक्शन कहते थे इसको। तो भगवान ऐसे नहीं है जिनके केवल 10 करोड़ नाम है। हमारे लिए लग रहा हो कि भाई 10 करोड़ नाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान के लिए 10 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बताया गया है कि भगवान के गुण असंख्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भले कोई वैज्ञानिक, ऐसे बुद्धिमान वैज्ञानिक भी कोई हो जो सारे ब्रह्मांड के भीतर जितने भी तारे हैं उनको गिन ले, समुद्र के तट पे जितने भी बालू के कण हैं, रेती के कण हैं, वो भी गिन लें, परंतु वो कभी भी भगवान के असंख्य गुणों का, गुणों गुणों की गणना नहीं कर पाएंगे, ये असंभव है। बल्कि अनंत शेष भी भगवान के गुणगान करते करते भगवान के गुणों के समाप्ति तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि भगवान के गुणों की, उनके नामों की आदि कोई समाप्ति है ही नहीं। तो ये 10 करोड़ वाली बात तो बैठती ही नहीं है। तो भगवान के असंख्य नाम हैं, और क्यों ऐसे, क्योंकि भगवान के कार्य अनेक हैं, उनकी लीलाएं अनेक हैं, उनके कर्तव्य अनेक हैं, उनके गुण अनेक हैं, तो इनके अनुसार उनके अनेक भक्त उनको अनेक नाम देते हैं। जैसे यशोदा नंदन, नंद नंदन, उनके भक्तों के साथ उनके भी संबंध बड़े प्रेम के रहते हैं। भगवान के कितने भक्त हैं, असंख्य। उनके साथ बर्ताव कैसा है, बड़ा प्रेम का बर्ताव है। तो इसलिए अपने भक्तों के साथ जब भगवान श्री कृष्ण संबंध रखते हैं तो उन संबंधों के अनुसार भी उनके अनेक नाम आ जाते हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, पार्थ पार्थ सारथी गोपी जन वल्लभ रुक्मिणी रमण। तो जब भगवान अपने भक्तों के साथ में कोई संबंध स्थापित करते हैं प्रेम का, उसके अनुसार भी उनके अनेक नाम आ जाते हैं। साथ साथ में भगवान के गुण अनेक होते हैं, भक्त वत्सल, तो उनके गुणों के अनुसार उनके भी अनेक नाम आ जाते हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है, इसलिए उनका उनके अनेक नाम उनके सौंदर्य के ऊपर हैं। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। ऐसे आचार्यों ने बताया है कि यदि किसी चीज को वस्तु कहा जाना चाहिए या एक व्यक्ति माना जाना चाहिए, तो उसके चार चीजें होनी चाहिए, चार लक्षण होने चाहिए। एक है उसका नाम होना चाहिए, दूसरा उसका रूप होना चाहिए, तीसरा है उसके गुण होने चाहिए, और चौथा है कि उसके कार्य होने चाहिए। जब ये चार चीज होंगे तो हम मान सकते हैं कि एक वास्तव में एक वस्तु है, एक व्यक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखिए, तो उनके उनका नाम, उनके अनेक नाम हैं, जो परम सत्य हैं भगवान, उनके अनेक नाम हैं। उनके उनका रूप है, उनके अनेक रूप भी हैं। विष्णु का रूप है, वृंदावन के कृष्ण का रूप है, द्वारकाधीश का रूप है, वराह देव, मत्स्य देव, ऐसे कितने सारे रूप हैं भगवान के। साथ साथ उनके गुण भी अनेक हैं, लीलाएं भी अनेक हैं। तो भगवान के अनेक रूपों के अनुसार, उनके अनेक गुणों के अनुसार, उनके अनेक लीलाओं के अनुसार उनके अनेक नाम होते हैं। तो भगवान के नाम क्या हैं, भगवान के नाम कैसे रखे जाते हैं, उनके रूप गुण और लीला के आधार पर। तो जिनके गुण रूप और लीला हैं उनके अवश्य नाम हैं। तो इसलिए भगवान के इतने सारे गुण रूप लीलाएं हैं कि उनके नाम भी अनेक हैं। तो ये सुंदर बात है। और इन चार लक्षणों के द्वारा परम सत्य अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करते हैं। और बड़े अद्भुत बात यह है कि इन चार चीजों में कोई अंतर नहीं है, और न ही ये चार चीजें भगवान से भिन्न है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का रूप भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के गुण भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की लीलाएं भगवान से भिन्न नहीं है, और ये चारों चीजें एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो ये सब परम सत्य के स्तर की अद्भुत बातें हैं। इस संसार के दृष्टि से यदि हम समझने का प्रयास करें तो ये संभव नहीं है। हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान के समस्त नामों में दो वर्ग किए जा सकते हैं, दो प्रकार के नाम बताए जा सकते हैं भगवान के। एक को कहते हैं मुख्य नाम, दूसरा है गौण नाम। मुख्य नाम मतलब वो नाम जो भगवान के दिव्य लीलाओं से संबंधित है, जिनमें कि भगवान के संपूर्ण आध्यात्मिक विशेषताओं की प्रकटता होती है, प्राकट्य होता है। जैसे कि गोविंद, गोपाल, गोपी जन वल्लभ, ब्रजेंद्र नंदन, नंद गोपाल, ये सारे भगवान के वृंदावन के सुंदर नाम हैं भगवान के। और ऐसे उनके जितने भी आध्यात्मिक जगत के संबंध में लीलाएं हैं और गुण आदि हैं, उनके संबंध में जितने भी नाम हैं उनको मुख्य नाम कहते हैं, ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं। साथ साथ में ऐसे भी भगवान के अनेक नाम हैं जो भौतिक सृष्टि से संबंधित हैं, जैसे कि परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश्वर, ईश्वर, जगदीश, सृष्टिकर्ता, तो ये सब गौण नाम कहे जाते हैं। तो इनका भी अवश्य महत्व है, क्योंकि भक्त के दृष्टि से देखा जाए तो भक्त दोनों तरह के नामों को मानते हैं, क्योंकि भगवान की जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो लीलाएं हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए, विशेष करके भक्त को चाहिए, कि वो भगवान के सृष्टि लीला को उतने ही ध्यान से समझने का प्रयास करे जितना कि वो रास लीला समझने का प्रयास करता है। विशेष करके जो नौसुखिया भक्त होते हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सृष्टि की लीलाएं हैं, इनमें हमें कोई रुचि नहीं है, हम तो केवल रास लीला के बारे में सुनेंगे। नहीं, हमें भगवान के समस्त लीलाओं के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। फिर भी हरिदास ठाकुर तत्व के दृष्टि से भेद करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मुख्य नाम है भगवान के, जो उनकी दिव्य लीलाओं से संबंधित हैं, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, और इसके द्वारा वो भगवान के निज धाम में पहुंच सकता है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, भगवान की लीलाओं में शामिल हो सकता है, भगवान का व्यक्तिगत संग उसे मिल सकता है अंततः। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण के पवित्र शाश्वत धाम को प्राप्त करना। दूसरी ओर जो भगवान के गौण नाम हैं, जो भगवान की सृष्टि से, ये भौतिक सृष्टि से संबंधित हैं, इन नामों के प्रति जो रुचि है वो अधिकतर ऐसे लोगों की होती है जो कि कर्मकांड, ज्ञानकांड आदि में लगे हैं, जो या तो धर्म का आधार लेकर इस भौतिक सृष्टि के भीतर रहना चाहते हैं और अधिक भोग करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं, इस भौतिक सृष्टि से बाहर निकलने का उद्देश्य उनका नहीं होता, फिर भी धार्मिक है। या तो फिर ऐसे लोग हैं जो इस सृष्टि से ऊब गए हैं और तंग आकर हैरान होकर मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप में लीन होना चाहते हैं। तो अधिकतर ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान के गौण नाम में रुचि लेते हैं। हम एक बार एक जगह गए थे, हमें प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था, और हमने पहले प्रवचन दिया और एक साधु को भी बुलाया गया था जो हमारे बाद में जिन्होंने प्रवचन दिया। तो उनके प्रवचन में उन्होंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, उन्होंने केवल ऐसे परमात्मा तक पहुंचे कि परमात्मा है, परमेश्वर है। जब वो भगवद गीता की बात कर रहे थे, कृष्ण ये शब्द नहीं आया, गोविंद, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, ये सारे नाम भगवान कृष्ण के हैं जो भगवद गीता में पाए जाते हैं, परंतु एक बार भी उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया कृष्ण का, और ऐसे नाम लिए परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश्वर, ऐसे नाम ले रहे थे, वो भी बहुत कम। तो जहां भक्तों के हृदय की बात होती है, उनके हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होता है भगवान के प्रति, इसलिए वो ऐसे नाम पसंद करते हैं जो भगवान के भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान की लीलाओं से संबंधित होते हैं। जब हम कहते हैं गोपाल, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि वो भगवान जो गौओं का पालन करते हैं। गाय तो भगवान के भक्त हैं और भगवान गौओं का देखभाल करते हैं, भगवान का कार्य ही ये है गोलोक वृंदावन में। उसी तरह से गोपी जन वल्लभ, भगवान अपने प्रिय गोपी जनों के साथ में लीला करते हैं। राधिका रमण या रेवती रमण या रुक्मिणी रमण, भगवान अपने विविध रूपों में, चाहे कृष्ण हो, बलराम हो, भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे नामों को अधिक पसंद करते हैं, परंतु जब अन्य नाम भी आए भगवान के, जो गौण नाम है, जो इस सृष्टि से संबंधित हैं, फिर भी भगवान के भक्त इनको नकारते नहीं है, वो उनको भक्ति भाव से ही देखते हैं। इसी भावना से इन नामों को भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान के अनेक नाम भगवद गीता में भी पाए जाते हैं। कितने नाम होंगे भगवान कृष्ण के गीता में, किसी को पता है? 2, 5, 10, 100 अंदाज कुछ बताइए। 40 से भी अधिक नाम है और अलग अलग नाम। कई बार एक नाम अनेक श्लोकों में आते हैं और कई बार केवल 2 या 3 श्लोकों में आते हैं। तो ऐसे भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें हम मुख्य नाम भी पाएंगे, गौण नाम भी पाएंगे, परंतु हम भेद नहीं करेंगे। हम सारे नामों को उतने ही भक्ति भावना से स्वीकार करेंगे। वैसे भगवद गीता क्या चीज है? क्या केवल ये एक ग्रंथ है? क्या ये केवल एक दार्शनिक टीका है या एक दार्शनिक ग्रंथ है जिससे हम कुछ दार्शनिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? क्या केवल ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें भगवान या हमें अपने जीवन के ध्येय का ज्ञान दिया जाता है? हाँ, अवश्य ये सब है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवद गीता भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त अर्जुन के बीच में प्रेम के आदान प्रदान के रस का प्राकट्य है। ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रेम इन 700 श्लोकों के माध्यम से प्रकट होता है। देखने वाला समझ जाता है, जो देख नहीं सकता है, जिसकी भक्ति की दृष्टि नहीं है, भक्ति के नेत्र नहीं है, वो भगवद गीता को कुछ और समझ लेता है, इसलिए अपनी गीता लिख बैठता है भगवद गीता भूलकर। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोगों को इसे भगवद गीता नहीं कहना चाहिए, वो अपने नाम के पीछे को गीता कहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान और भक्त का संवाद चल रहा है, तो भक्ति नहीं है तो और क्या हो सकता है? जब दो भक्त भी साथ में मिलते हैं तो भक्ति की बात करते हैं। तो भगवान और भक्त साथ में मिलके बात करेंगे तो भक्ति की बात छोड़ के और क्या करेंगे भला? इसलिए भगवद गीता ये एक भक्ति रस का शास्त्र है। भगवान और उनके भक्त के बीच में प्रेम का संबंध है, इन श्लोकों के द्वारा ये प्रकट होता है। तो भगवान कृष्ण के जितने भी नाम हैं भगवद गीता में, उनमें भी हम ऐसा रस देख पाएंगे। इसके पीछे एक तात्पर्य है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम भगवद गीता में क्यों हैं? क्या कोई इसका कारण नहीं है? क्या केवल ऐसे है कि भगवद गीता के अंदर विविधता रखने के लिए, ताकि पढ़ने वाला सुनने वाला ऊब न जाए? नहीं, हर एक नाम का अर्थ है, मतलब है, और उस समय उस श्लोक में अर्जुन जब किसी विशेष नाम से भगवान को पुकारते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण है। तो आचार्यों ने भी ऐसे अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। तो भगवद गीता के नामों की चर्चा करते करते आज एक प्रवचन में तो सारे नामों की चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2-3 नाम तो कम से कम 2-4 नाम के बाद नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवद गीता में कृष्ण का नाम जब आता है तो 14वें श्लोक में, तो 14वें श्लोक का यहाँ है, तो हम इस 14वें श्लोक को, और इसमें कौन सा नाम आता है आप पढ़ के देख लीजिए, कौन सा नाम आता है इसमें।
माधव
सही बात है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः।
बोलिए एक प्रभु जी एक माता जी।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव शङ्खौ प्रदत्मतुः।
तो यहाँ
संजय वर्णन कर रहे हैं,
ये पहले अध्याय में ही आता है। हम देखेंगे कि पहले अध्याय में जितने भी भगवान कृष्ण के नाम आते हैं उनका तात्पर्य ये है कि अर्जुन का विजय होना है, क्योंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण दार्शनिक कोई तत्वों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब तो संजय वर्णन कर रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, रणभूमि में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं अर्जुन और कृष्ण, और उनके बीच में वार्तालाप की शुरुआत मात्र हो रही है। इसलिए यहाँ जो अनेक नामों का उल्लेख होगा इस प्रथम अध्याय में, उनका विशेष करके उद्देश्य यही होगा ये बतलाने के लिए कि जय अर्जुन का ही निश्चित है। तो संजय जब ऐसे बतला रहे हैं तो उनका भी उद्देश्य है कि धृतराष्ट्र समझ ले कि उनके धृतराष्ट्र के पुत्रों की जय की कोई संभावना नहीं है। तो ये चौदहवें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसे है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब कृष्ण अपना शंख बजा रहे हैं तो संजय माधव शब्द का प्रयोग करते हैं, माधव पांडवश्चैव, और अर्जुन को वो पांडव कह के संबोधित करते हैं। अर्जुन के भी अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण के अनेक नाम भगवद गीता में हैं वैसे अर्जुन के भी हैं। अर्जुन के भी करीब करीब 23 नाम पाए जा सकते हैं, उनमें से पहला नाम अब यहाँ हम देख रहे हैं पांडव पांडु पुत्र। वैसे अर्जुन और उनके चार भाइयों को पांचों को ही पांडव कहते हैं, लेकिन यहाँ जब संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं तो संबोधन अर्जुन को हो रहा है, अन्य भाइयों को नहीं। साथ साथ कृष्ण को संबोधित करते समय वो माधव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो माँ संस्कृत में लक्ष्मी देवी हैं और धव पति, तो माँ धव का मतलब है लक्ष्मी देवी के पति। तो दूसरे शब्दों में संजय ये बतलाना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के साथ में कौन है। सबसे पहली बात है कि अर्जुन कौन है, पांडव है, पांडु के पुत्र हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसके साथ अर्जुन के साथ में चार भाई हैं जो बहुत शूरवीर हैं, बहुत योग्य हैं। तो ये पांच पांडव हैं और इनके साथ में है कौन? माधव है। माधव कौन है? लक्ष्मी के पति, सरस्वती के पति। तो लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य, मंगल्य आदि के प्रतीक है। तो जहाँ लक्ष्मी देवी हैं वहाँ विजय, ऐश्वर्य, नीति आदि सब अवश्य उपस्थित होगा। तो संजय कहना चाहते हैं धृतराष्ट्र से कि देखिए, यहाँ पर जब माधव हैं कृष्ण, तो लक्ष्मी देवी अवश्य उपस्थित होंगी, और जब लक्ष्मी देवी हैं तो ऐश्वर्य, विजय आदि ये सब अर्जुन का होगा, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ में हैं। तो ये है माधव शब्द का तात्पर्य। वैसे भी अर्जुन बाद में कृष्ण को संबोधित करते हैं, ये तो 14वें श्लोक में, आगे 36वें श्लोक में भी अर्जुन श्री कृष्ण को माधव कह के पुकारते हैं। और अर्जुन के मन में ये एक संशय था कि हे कृष्ण, आप मुझसे कह रहे हो युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध से क्या भला हो सकता है? युद्ध में किसी के लिए अच्छाई हो सकती है? युद्ध में केवल लाखों लाखों लोगों की हत्या होनी है, बस इतना ही होगा। तो इसमें मंगलकारी चीज कौन सी है? किसका मंगल होगा, किसका कल्याण होगा इसके द्वारा, किसकी भलाई होगी इसमें? किसी का लाभ नहीं होगा, किसी की भलाई नहीं होगी। तो ये एक मुझे विरोधाभास लग रहा है हे कृष्ण, कि आपका नाम है माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, और लक्ष्मी देवी वहां रहती हैं जहां मंगल्य होता है, जहां मंगल है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां मंगल है, सबका हित होता है, और आप लक्ष्मी के पति हैं, और आप ऐसा कोई कार्य मुझे कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हो जो अमंगल है, जो अशुभ है, जिसमें सबका नुकसान होना है, लाखों लोगों की हत्या होनी है, तो आपको ये शोभा नहीं देता। मुझे ये एक प्रकार का विरोधाभास लग रहा है हे कृष्ण, इसलिए आप ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे कि युद्ध करो? ये किस प्रकार का कल्याण है? कल्याण कैसे हो सकता है इसके द्वारा? तो ये अर्जुन का संशय था। तो इस 14वें श्लोक में भी और 36वें श्लोक में भी दोनों जगह माधव शब्द है। एक बार संजय इस शब्द का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार स्वयं अर्जुन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे माधव शब्द अनेक जगह भागवत आदि शास्त्र में पाया जाता है। ब्रह्मा जी भी 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के जब माधव शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करते समय माधव शब्द का ये तात्पर्य देते हैं कि जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, या जिनका आश्रय लेने के कारण भक्तों का कभी नुकसान नहीं होता है, भक्त कभी खो नहीं जाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना दशम स्कंद में है भगवान के प्रति। तो उसी प्रकार से अर्जुन जब माधव शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं भगवान को, वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैं आपका भक्त हूं, तो मैं खो नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा, तो फिर क्या डर? फिर भी आप मुझे ऐसे क्यों कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हो? तो खैर, ये है माधव शब्द, लक्ष्मी देवी के पति कृष्ण। माधव शब्द का दूसरा भी अर्थ है। आपने राजा ययाति का नाम अवश्य सुना होगा। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी आता है। अब राजा ययाति को एक बार एक श्राप मिला था कि वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी युव अवस्था खत्म हो जाएगी, तुरंत वो बूढ़े बन जाएंगे। तो उनको बड़ा भय लगा कि अरे, मेरी इंद्र तृप्ति तो खत्म हुई नहीं है अभी, और अभी अचानक बुढ़ापा आ गया, तो फिर भोग मैं कैसे कर पाऊंगा? तो वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने क्षमा याचना की शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं वह पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकते, परंतु थोड़ा कुछ मैं बदल सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उसका यौवन दे दे और आप यदि उसको अपना बुढ़ापा दे दो तो आप ये युव अवस्था में रह के भोग कर सकते हो और वापस उसको अपनी उसकी युव अवस्था लौटा के अपना बुढ़ापा ले सकते हो वापस। तो फिर ययाति महाराज जो है अपने पुत्रों के पास में गए और सबसे पूछा, जब बड़े पुत्र थे उन्होंने कह दिया ना हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जवान हैं, हमें अभी भोग करना है, अभी आपको देंगे तो हमारा क्या होगा, हम नहीं करेंगे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु, यदु भगवान के भक्त थे। तो यदु ने जब इनकार किया इस दृष्टि से नहीं किया कि मुझे भी भोग करना है, मुझे भी युग अवस्था चाहिए, नहीं, इसके पीछे गुह्य कारण था। प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि यदु के वंश में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे और ये यदु को पता था, इसलिए यदु ने सोचा मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे आगे वंशज नहीं होंगे तो फिर कृष्ण कैसे प्रकट होंगे मेरे वंश में, इसलिए मुझे तो बुढ़ापा इस समय स्वीकार करना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बुढ़ापा नहीं स्वीकार किया। हो सकता है दो तीन और भाई थे, उन्होंने विषय भोग में ये बाधक है बुढ़ापा, इसलिए स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक पुत्र ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मानते थे। तो पिता की सेवा के लिए उन्होंने सोचा आपको जो आनंद पहुंचाता है तो मैं वही करूंगा। तो खैर ये यदु महाराज के पुत्र थे महाराज मधु। तो मधु वंश में आने वाले कृष्ण उनका नाम है माधव, ये दूसरा अर्थ है। तो कृष्ण का कृष्ण यादव भी हैं क्योंकि वो यदु वंश में आते हैं, यदु के वंशज हैं, परंतु वो यदु के पुत्र मधु के भी वंशज हैं इसलिए वो माधव भी कहलाते हैं। और यदु के भाई थे एक भाई पुरु, और पुरु के वंश में आते हैं अर्जुन। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों का इतना पुराना संबंध है, उनकी वंशावली यदि हम देखते हैं उनके तो पीछे वाले उनके पूर्वजों की का वर्णन देखते हैं तो अवश्य महाराज ययाति तक पहुंच जाते हैं और उनसे पीछे फिर आगे सूर्यवंश तक। तो इस प्रकार से दूसरा शब्द माधव का है कि वो मधु राजा के वंश में आते हैं, यदु वंशी हैं। तो ये दो शब्द होते हैं माधव के। अब आगे चल के और 15वें श्लोक में ही वर्णन करते हैं संजय, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, क्योंकि अभी कह चुके हैं कि वो शंख बजाने लगे। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है और उनके शंख का नाम है पांचजन्य, और अर्जुन का और एक नाम है धनंजय, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। तो अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाने लगे और श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। तो ऋषिकेश ये दूसरा नाम भगवान कृष्ण का भगवद गीता में आता है। तो ऋषिकेश का नाम क्या है? वैसे मूल रूप से ऋषिकेश का अर्थ होता है जो ऋषिकों के ईश हैं या स्वामी हैं या नियंत्रक हैं। तो जो समस्त प्राणियों के इंद्रियों के स्वामी हैं वो ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषि का मतलब इंद्रियां, जिनके द्वारा इंद्रियां नियंत्रित हैं, जो इंद्रियों के नियंत्रण करने वाले हैं वो है श्री कृष्ण। अब जब ऋषिकेश पांच जन्य को बजा रहे हैं तो क्या घोषणा कर रहे हैं? जब ऋषिकेश शंख बजा रहे हैं, शंख क्यों बजाया जाता है? ये एक जय घोष होता है। क्षत्रिय समाज में ऐसे किया जाता था, युद्ध के पहले शंख बजाते हैं हौसला बढ़ाने के लिए सबका, अपने साथियों का और अपना भी हौसला बढ़ाने के लिए, और एक प्रकार का जय घोष हुआ। वो सावधान करना चाहते हैं शत्रुओं को, मैं शंख बजा रहा हूँ, खबरदार अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो एक प्रकार का जय घोष है ये। तो संजय कहना चाहते हैं कि कौन शंख बजा रहे हैं पांचजन्य? ऋषिकेश। ऋषिकेश वो हैं जो न केवल समस्त प्राणियों के इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन अर्जुन के भी इंद्रियों के स्वामी है ना। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण अर्जुन के इंद्रियों को संभाल रहे हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन श्री कृष्ण के सहायक हैं। मुख्य कार्य किनका चलने वाला है? कृष्ण का। तो ये युद्ध किनका है, कौन लड़ने वाले हैं? कृष्ण लड़ने वाले हैं, जिसमें अर्जुन केवल उनके निमित्त बन रहे हैं। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो संजय कहना चाहते हैं कि अभी अर्जुन केवल सहायक हैं, निमित्त हैं कृष्ण के, जिनका नाम ऋषिकेश है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा अर्जुन के इंद्रियों को नियंत्रित करके अर्जुन को विजयी बनाएंगे, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं। तो ये तात्पर्य है। साथ साथ बलदेव विद्याभूषण ये भी बताते हैं कि ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है कि वो जो अपने भक्तों को, भक्तों की इंद्रियों को अपनी ही सेवा में लगा देते हैं। तो यदि हम कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण से ही प्रार्थना करनी होगी कि आप हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमारी इंद्रियों को आपके चरणों में आप रखिए, आपकी सेवा में हमारी इंद्रियों को लगाइए। ये इसका तात्पर्य है। तो ये हुआ ऋषिकेश। और धनंजय अर्जुन का नाम है। इसका मतलब है कि जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर के लिए धन प्राप्त किया था, विशेष करके जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ संपन्न करना पड़ा, जिसके लिए बहुत बड़े मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तो अर्जुन ने बहुत विशेष कार्य किया था उस समय, इसलिए अर्जुन का नाम पड़ गया था धनंजय। और आगे चल के भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण का नाम ऋषिकेश 20वें श्लोक में भी पाया जाता है। और साथ साथ 21वें श्लोक में अब भगवान का नाम होगा अच्युत। अब संजय, अब अर्जुन बात करना शुरू कर रहे हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, कि हे अच्युत, हे कृष्ण, अब इस रथ को कृपया आप दोनों सेनाओं के बीच में ले आइए और इसको खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं दोनों सेनाओं को कि किसके साथ हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने कौन कौन है, हमारे ये सब रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजनों को, हमारे भाईजनों को, हम सबको देखना चाहते हैं। तो कृपया हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए। तो अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? जिनका च्युत नहीं होता है, जिनका पतन नहीं होता है, ये अच्युत है। अच्युत का दूसरा शब्द ये भी है कि जो अपने कर्तव्य से कभी दूर हटते नहीं है, अपने कर्तव्य को निभाने में कभी असफल नहीं होते हैं, वो अच्युत है। जो अपने संकल्प में दृढ़ हैं, जो अपने वचन को बनाए रखते हैं, और विशेष करके अपने भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है, उससे वो कभी हटते नहीं हैं, वो भक्तों के लिए जो भी सेवा कर रहे हों उससे हटते नहीं हैं वो। जैसे इस समय वो अर्जुन के सारथी बने हैं, तो सारथी बनने का मतलब क्या है कि वो एक साधारण सेवक बने हैं कृष्ण के, अर्जुन के, और सारथी बन के वो अर्जुन के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब वैसे कृष्ण भगवान हैं, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी वो एक जीव के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में उनको बहुत आनंद आता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार एक न्यायाधीश जब अपने घर में आएगा, घर में आ जाता है, तो कभी कभी अपने पोते के साथ में वो खेलता है और वो पोते के लिए एक घोड़ा भी बन जाते हैं। जो उनका छोटा पोता होता है, छोटा बच्चा होता है, उनकी पीठ में चढ़ जाता है। और ये इतने बड़े न्यायाधीश होते हैं, इतने बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, वो अब अपने पैरों पे घुटनों पे चल जाते हैं और ये बच्चा उनके कंधों पे बैठता है और कहता है चलो आगे घोड़ा, चलो आगे। घोड़े को चाबुक मार के आगे भगाते हैं, वो न्यायाधीश बड़े आनंद से वो चलते रहते हैं। तो ऐसे प्रेम के संबंध होते हैं, प्रेम के कारण व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, एक न्यायाधीश का स्थान बहुत ऊंचा होता है समाज में। जब कोई व्यक्ति अदालत में बैठा होता है, उसको बड़े सम्मान पूर्वक बैठना चाहिए और बात करना चाहिए। एक भक्त हमारे वकील है, वो बता रहे थे कि एक बार एक कोई व्यक्ति एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल के बैठे थे ऐसे, तो अदालत के किसी अधिकारी व्यक्ति ने आके कहा ऐसे नहीं बैठना है आपको, आप अदालत में बैठे हो। तो बैठते समय भी सम्मान पूर्वक बैठना है, बात करते समय भी न्यायाधीश को अदालत माय लॉर्ड कहते हैं, तो सम्मान से देखना, सम्मान की दृष्टि से न्यायाधीश को देखना चाहिए। और यदि हम कुछ एक गलत शब्द कह देते हैं न्यायाधीश को, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, जेल में आदमी डाला जा सकता है। ऐसे होना भी आवश्यक है। और न्यायाधीश की शक्ति देखिए, जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है उसको छुड़वा सकते हैं, और जो कोई दूसरा गुनाहगार हो जिसको अब तक कुछ दंड न मिला हो उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं। ये शक्ति है एक न्यायाधीश की। लोगों का जीवन उनके हाथ में होता है, लोग उनके सामने जब अदालत में बैठते हैं तो सम्मान पूर्वक बात करते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन वही न्यायाधीश जब घर आ जाता है तो अपने छोटे से पोते के लिए ऐसे कार्य कर बैठता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। तो उसी तरह से भगवान अपने भक्त के लिए भी ऐसे सारथी बन रहे हैं, उनके उनका रथ चला रहे हैं। लेकिन अंतर न्यायाधीश और कृष्ण में बहुत बड़ा है। क्या अंतर है? न्यायाधीश इस तरह जो काम करते हैं अपने पोते के लिए, केवल अपने घर के अंदर बंद दरवाजों के पीछे करते हैं। न्यायाधीश कभी अदालत में ऐसा नहीं करेंगे, न कभी आप देख पाएंगे ऐसे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अपने भक्त की रथ चलाई सबके सामने, केवल दो चार लोगों के में नहीं, लाखों सैनिक उपस्थित थे वहां पर। उन सब के सामने बड़े आनंद से भगवान ने सबको यह संदेश भेज दिया, देखो मैं पार्थ सारथी हूं, मैं मेरे भक्त का सेवक हूं। बड़े आनंद से, बड़े गर्व से मैं घोषणा करता हूं। ये अंतर है। जब भगवान एक निम्न श्रेणी को स्वीकार करते हैं, तथा कथित निम्न श्रेणी को स्वीकार करते हैं, अपने भक्त के लिए अपने भक्त के प्रति प्रेम का आदान प्रदान प्रकट करने के लिए, तो उससे भगवान का गौरव बढ़ जाता है। तो भगवान ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि मैं मेरे भक्त का सेवक हूं, और इसलिए ये ऐसे कहा जाता है, ऐसे भगवान करते हैं क्योंकि भक्त भगवान के अंदर एक गुण होता है जिसको भक्त वात्सल्य कहते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता के कारण वो ऐसे अच्युत हो गए हैं। अपने भक्त अर्जुन के प्रति जो उनकी सेवा थी, उनका प्रेम था, उससे हटे नहीं। भले उनको एक निम्न श्रेणी का पद स्वीकार करना पड़ा, उनका एक ड्राइवर बनना पड़ा, फिर भी भगवान इस कार्य से हटे नहीं। अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं एक जीव के लिए एक दास बन जाऊं? नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो भगवान च्युत हो जाते हैं, लेकिन भगवान च्युत हो नहीं सकते, भगवान अच्युत हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है, उसके अनुसार वो सदैव कार्यरत रहेंगे। वो अपने कर्तव्य को, प्रेम से जो उत्पन्न होने वाले कर्तव्य हैं, उनको कभी त्यागेंगे नहीं। भले संसार जो भी कुछ क्यों न कहे, वो भक्तों के सेवा करेंगे। ये है भक्त वत्सल। वत्सल, ये इस शब्द के अर्थ दो तीन हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये है, वत्स मतलब बछड़ा, तो वत्सल मतलब जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम करती है और रक्षा करती है, तो उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये भक्त वत्सल का एक मतलब है। भक्त वत्सल का दूसरा भी मतलब है, वत्स मतलब वक्षस्थल, और ल मतलब लट धातु या जिसे रक्षा, रक्षति। तो जो व्यक्ति भक्तों को अपने करीब ले आकर उनकी रक्षा करते हैं, वो है भक्त वत्सल। तो अच्युत शब्द का हृदय या सार है भगवान की भक्त वत्सलता। तो अच्युत जब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि आप भक्त वत्सल हैं। तो अच्युत और भक्त वत्सल का अर्थ एक ही है, इस दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए ऐसे कितने सुंदर ढंग से हमारे आचार्यों ने विश्लेषण किया है कि कैसे ये भगवद गीता का संवाद एक भक्ति के रस के आदान प्रदान का प्राकट्य है, केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है ये। तो अर्जुन अपने भावपूर्ण हृदय को व्यक्त कर रहे हैं अच्युत कह के, कृष्ण को बुला रहे हैं, हे अच्युत, मैं जानता हूं कि आप कभी अपने भक्त के प्रति जो कर्तव्य है उससे हटेंगे नहीं, उस स्थान से आप कभी गिरेंगे नहीं, आप अटल रहेंगे आपकी सेवा में, आपके प्रेम में। आप भक्तों को जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कभी आप धोखा नहीं देंगे, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, आप अच्युत हैं। और अच्युत शब्द का यह भी अर्थ है कि जिनका अपने स्थान से पतन नहीं होता, मतलब भगवान भगवान है, भगवान का कभी भगवान के स्तर से नीचे पतन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है अच्युत, नहीं तो वो भगवान हो ही नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में जो भगवान हैं वो हमेशा भगवान थे, आज हैं और भविष्य में भी भगवान रहेंगे, और जो भगवान नहीं है वो पहले भी भगवान नहीं थे, आज भी नहीं है और भविष्य में भी कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। जो भगवान है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, ये स्पष्ट बात है। इसलिए जो भगवान नहीं है, जितना भी वो चुनाव क्यों ना लड़ें, जितना भी धन क्यों ना एकत्र करें, जितनी भी तपस्या क्यों ना करें, जितने भी ग्रंथों का अध्ययन क्यों ना करें, वो भगवान नहीं बन सकते। और भगवान जितना भी वो क्यों कुछ न करे, वो भगवान भगवान ही रहते हैं। जब वो भगवान से कुछ और बनना चाहते हैं, तो वो अपने आप को विस्तार करते हैं, उनकी शक्ति के द्वारा वो जीव बन जाते हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा फिर वो अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जीव तटस्था शक्ति का अंश है। तटस्था शक्ति का मतलब जो तट पे है, भगवान की शक्ति। तट पे रहने का मतलब है कि ये जीव जो है ये भगवान के आध्यात्मिक दिव्य शक्ति के अंतर्गत आ सकता है, या तो कभी कभी भगवान की बहिरंगा माया शक्ति के अधीन भी हो सकता है। इसलिए जीव यहाँ भी या ये वहां भी। अब यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अधिकतर जो जीव हैं वो सब माया के अधीन हैं। विरला ही ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जो भगवान के अधीन होने का प्रयास करते हैं, और भगवान के शरण में आने के बाद भी एक आध बार ऐसे देखा जाता है कि व्यक्ति डावाडोल हो जाता है, फिर से माया में फिसल के गिर पड़ता है। तो ये जीव का स्वरूप होता है, परंतु भगवान कभी उनकी माया के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि माया भगवान के अधीन होते हैं हमेशा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत है। हम सब च्युत हैं, हम गिर जाते हैं और हमारा पतन हुआ भी है, इसलिए तो हम इस भौतिक सृष्टि में हैं। परंतु भगवान का पतन कभी नहीं हो सकता, बल्कि भगवान इस माया शक्ति का संपर्क भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी इतने महान हैं, फिर भी क्योंकि वो माया से स्पर्श करते हैं तो वो दोषी हो जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्पर्श नहीं करते हैं, हमेशा माया के स्वामी रहते हैं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। तो ऐसे तीन नामों का संक्षेप में हमने आज चर्चा किया है। एक है माधव, दूसरा है ऋषिकेश और तीसरा अच्युत। वैसे भगवान के और कई नाम हैं, लेकिन आज के लिए हम कथा को विराम यही करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक है यहाँ।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
महाराज, जैसे आपने कहा अभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बारे में, तो ब्रह्मा जी के बारे में तो जैसे आता है कि अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, तो क्या शिव जी जो है वो एक ही रहते हैं या उनका भी वो भी चेंज होते हैं?
बदलते नहीं है, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में जैसे एक ब्रह्मा जी है वैसे एक शिव जी भी है। शिव जी और ब्रह्मा जी की बात दूर है, विष्णु भी है ना। हर एक ब्रह्मांड में विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव जी हैं।
जैसे हमारे जो शिव जी हैं वो जैसे कल्प चेंज होता है, वही शिव जी होते हैं? जैसे ब्रह्मा जी तो चतुर्मुखी हैं, अलग अलग आते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शिव तत्व होते हैं?
नहीं, ब्रह्मा जी अलग अलग जीव हो सकते हैं, लेकिन शिव जी का शिव तत्व एक ही होते हैं। वो मूल शंभु तत्व से प्रकट होते हैं और अपने आप को हर एक ब्रह्मांड में शिव के रूप में प्रकट कराते हैं। ठीक है, और एक कोई प्रश्न किसी का हो तो। हाँ हरे कृष्णा।
तो महाराज, जो आपने गौण नाम और मुख्य नाम बताया, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हरि नाम अमृत एक पुस्तक, उसमें बताया गया है कि उसमें मुख्य नाम में गौणांग में दिखता है, जगन्नाथ ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो क्या मुख्य नाम?
हरि नामामृत नहीं, हरि नाम चिंतामणि, वो नाम ग्रंथ का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर का। हाँ, जब वो इन नामों का उल्लेख करते हैं वो विशेष करके कृष्ण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अवश्य गौरांग भी है ही, ये भी मुख्य नाम ही है भगवान का, क्योंकि कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी कृष्ण है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल उदाहरण दिए हैं दो चार, भगवान के मुख्य नाम तो असंख्य हैं, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, केवल दो चार नाम उन्होंने उदाहरण के तौर से दिए हैं बस, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।